द्विपक्षीय संवाद ही नए खोजों के लिए जनक माना जाता है। अगर हम दूरसंचार के क्षेत्र का विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि शुरुआती दौर में एक तरफा ही संचार अस्तित्व में आया। हर तरफ से एक तरफ का विचार दूसरे के सामने रखा जाता था और वे अपना विश्लेषण करते थे और तब वो अपने कार्य क्षेत्र में उसे उतारते थे और तब उसका जो परिणाम होता था वो उस पक्ष को मिलता था जो उस चीज को संवाद में देने का काम करते थे। परंतु इससे बहुत तरह के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता था। परिणाम सही रूप से नहीं धरातल पर दिखता था, इसलिए द्विपक्षीय संवाद की आवश्यकता सभी को महसूस हुई। परंतु जरूरतों का तकाजा था, इसलिए संवाद बढ़ा। तब द्विपक्षीय संवाद दोनों पक्षों को समझने के लिए दूरसंचार में आविष्कार की आवश्यकता हुई, इसलिए इस विचार को अति आवश्यक समझा गया। किसी मसले का हल बिना पक्ष विपक्ष को समझे बिना असंभव माना जाता है, तभी दोनों पक्षों का होना जरूरी होता है। इस कारण दूरसंचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति का उदय हुआ। विज्ञान, कला, वाणिज्य से लेकर लोकतंत्र तक इस विचार को समझा गया, जिसे सिद्धांत के रूप में डाला गया। इससे हर कोई प्रभावित हुए। तब इस क्रांति को एक बल मिला और हम आज इस दौर पे पहुंचे हैं कि बिना संवाद और बिना दूरसंचार के कुछ भी समझ पाना, विचार कर पाना काफी असंभव माना जाता है। बिना दूसरे को जाने किसी चीज को विचारे आविष्कार को बढ़ाना नामुमकिन सा लगता है। कोई भी विश्लेषण तब तक सार्थक नहीं जब तक हम दूसरे के पक्ष पर विचार ना करें और ना समझे। ये जमाना एक मंच है जहां हर कोई कलाकार है। प्रतियोगिता का दौर है। प्रतियोगिता हर मंच पर दिखता है, जहां एक कलाकार नहीं अनेक हैं। विजेता कोई एक है। बस बातों में बल होना चाहिए। पक्ष विपक्ष का जोर है, इसी पे हर निर्णय निकाला जाता है। प्राथमिकता किसी एक का होता है, बस बातों में बल होना चाहिए। फिर संवाद लंबा चलता है, निर्णय में विलंब होता है, पर परिणाम सही आता है। इसलिए इस तरह का विश्लेषण को बल मिलता है, जिससे दूर में होने वाली घटना का पहले जानकारी हमें मिल जाता है। क्योंकि इस तरह के दोनों पक्षों का संवाद के होने से आगे क्या घटित होगा, ये हमारी जानकारी में आता है। इसलिए इस तरह के संवाद का यह खासियत है, क्योंकि हर मसले के लिए दो पक्ष मौजूद होते हैं। हर तरफ दो मोड़ है, चाहे मसला कोई भी है। धन्यवाद।